और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण ही है धाम, बलदेव जी के रूप में, अनंत देव के रूप में, बल्कि बलदेव जी ही को समझिए। अनंत देव जी का यहाँ पर प्रवेश है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता। फिर कैसा धाम? वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में, ब्रज धाम में, ब्रज कहो गोकुल कहो, गोलोक के अंदर में है, किंतु गोलोक नहीं। गोलोक और ब्रज में अंतर है। गोलोक एक व्यापक चीज है, उसका प्राण है यह वृंदावन, उसके अंदर में चार दीवारी समझ लो गोलोक है, बीच में है, उसके बाद में है द्वारका, उसके भीतर में, उसके भीतर में गोकुल जहां पर जन्म हुआ, और उसके भीतर में वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, ये सब और सब, और उसके बीच में 16 क्रोश ब्रज में वृंदावन श्रेष्ठ, उसमें भी श्रेष्ठ ये गोवर्धन, गोवर्धन से भी श्रेष्ठ राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड में भी वैशिष्ट है, किंतु बिना श्याम के राधा कुंड नहीं, ये भी समझ लो, और बिना राधा जी कुंड के श्याम कुंड, दोनों इसलिए मिले हुए हैं। कुछ थोड़ी सी ऊपर से तो है वो, एक कुछ नहीं दरार नहीं, एक कोई सीमा रेखा है ऊपर से, और भीतर से उसका पानी उसमें, उसका पानी उसमें, दोनों जुगल एक है। ये वृंदावन धाम हुआ, वृंदावन में ही उनकी उपासना होगी और कहीं नहीं होगी, इस ब्रज में ही। और उसमें श्रीमद्भाग रम्या काचित उपासना बज बधु वर्ग न जा कल्पिता, यहां पर उनकी उपासना कैसी होगी? काचित उपासना बज बधु वर्ग न, गोपियों की कोई विशेष उपासना। विशेष उपासना क्या? रुक्मिणी सत्यभामा की उपासना नहीं, कोपजा की उपासना नहीं, साधारणी रति नहीं, समंजसा रति भी नहीं, कैसी? समर्था। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक जगह लिखा है, वृंदावन रासस्थली जो है वो समंजसा रति का स्थान है। उन्होंने एक आंशिक रूप में कहा है हमारे समझ से, समर्थारती तो द्वारका में, एम समझ्यासारती, यहाँ पर इसलिए कहा कि कुछ गोपियों ने पति रूप से उनको पाने की लालसा की थी। कौन सी? कात्यायनी की पूजा करने वाली। उस अंश में उन्होंने इस रूप में बतलाया, किंतु यह स्थान है समर्थारती का, गोपियों का। तो गोपियों ने एक विशेष उपासना पद्धति, उपासना पद्धति विशेष क्या है? संबंधानुगा कामानुगा में से जो कामानुगा है वो विशेष है, केवल संबंधानुगा यशोदा जी का, सखाओं का और लोगों का, ऐसा नहीं, बल्कि कामानुगा होना है। कामानुगा में भी विशेष ये रूप मंजर इत्यादि के जो भाव हैं, जिसको देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, जिनके भावों की एक छटा देने के लिए, वो भाव नहीं, भाव तो आस्वादन करने के लिए आए, राधा या प्रणय महिमा के दृश्य इत्यादि। इसको तो वो विशेषता क्या है? काचित उपासना बजु बधु वर्गे न जा कल्पिता, उनकी विशेष उपासना क्या है? कहने में तो थोड़ा सा ये लगता है, किंतु तभी मैं बतला देता हूं, पारकीय भाव, यही महाप्रभु जी का भाव था। ये कहीं भी नहीं, किसी जगह नहीं है, चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको दिया, किंतु पारकीय भाव को जागतिक मत समझो, अप्राकृत भाव समझो। व्रत के अतिरिक्त और कहीं नहीं है, गोपियों का अतिरिक्त कहीं भी विश्व ब्रह्मांड में नहीं है। इसलिए और संप्रदायों में यदि आजकल ये मिलन इत्यादि की राधा जी को प्यारी और कृष्ण को प्यारा मान करके जो भजन भी कुछ लोग संप्रदाय के करते हैं, वो रुक्मिणी सत्यभामा की तरह नित्य पति मान करके करते हैं, महाप्रभु जी के भाव को नहीं समझ सके। इसलिए विशेष उपासना क्या है? बजु बधु वर्ग, शादी नहीं, जोग माया ने उनकी शादी इधर उधर करा दी। विशेष करके शादी हुई कब? जबकि ब्रह्मा जी गुरु उनके गायों को चुरा ले गए, और सखाओं को उस समय कृष्ण ने सब गायों का, बछड़ों का और सखाओं का, ग्वाल बाल सबका रूप धारण कर लिया। उस समय गर्गाचार्य जी ने कहा कि इस वर्ष जो अपनी लड़की की शादी कर देगा वो परम सौभाग्यवती होगी, उसको कभी दुख नहीं होगा, वो समस्त सौभाग्य से युक्त है। बस सब गोप ने शादी कर दी, तो उस समय सखाओं के साथ में जितनी गोपियों की शादी हुई किससे हुई? कृष्ण से हो गई। जोगमाया ने इस प्रकार से इस कार्य को पूरा कर दिया और पारकीय भाव बना दिया। यथार्थ में कोई पारकीय नहीं है, गोपी भाव है उनका, जो भी विश्व के कहीं इतिहास में नहीं है ऐसा। गोपियों ने इस प्रकार की आराधना की, वो भी भागवत को प्रमाण, श्रीमद भागवतम वो प्रमाण। जैसे एक छोटी सी कहानी से समझिए, कृष्ण कभी अस्वस्थ हो गए और द्वारकापुरी में कहा जी हमको कोई यदि भक्त अपने चरण की धूली दे दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नारद जी वहीं पर खड़े थे, नारद जी ने पूछा कौन भक्त का चरण धूली लाऊं? कहे आप ही तो हमारे प्रधान भक्त हैं, आप ही दे दीजिए। अरे ये कभी मैं नरक नहीं जाऊंगा। फिर महिषियों से मांगा, किसी ने नहीं दिया, किसी भक्त ने जब नहीं दिया तो वृंदावन में आए, गोपियों ने सुना, अपना पैर झाड़ झाड़ करके सभी लोग मिल करके ले जाओ, ऐसा किसी भी भक्ति में नहीं है। कृष्ण के लिए सर्वस्व दान दे सकती है। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु करें, श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरो नः। गोपी में जैसी भक्ति होनी चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु जी की देन है, ब्रजभूमि की ये सेवा, यही ब्रज का भाव है। ऐसा ही भाव हम लोगों के आज चैतन्य महाप्रभु जी, अब इसी को विस्तृत हम करें। अभी राधा कुंड, श्याम कुंड, यहाँ की कितनी सब लीलाएं हैं, अब दूसरे दिन कभी यदि होगा, आज यहीं तक कब रहे। हाँ, एक कीर्तन करो।
राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य तत्कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्कृते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुस्ते देव प्रणमामि हरिप्रिय। हा देवी काकुभर गदगदयाद्यवाचा जाचे निपत्त भूवि दंडवत वुडभटारती अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके तव गणे गणना। अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दे वरं जड्डञ्जागुडरुचिसं विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं लीनसद्रामाभिरामोदरम् राधा स्कंद निवेशितो जल भुजम ध्यायेम दाम। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादि तरंग मध्ये कृपां शरणं। नमस्ते चरणा गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तराय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मयमां चरणे। भजामि राधामरविन्दनेत्रं मरामि राधम मधुरस्मितास्यम वदामि राधम करुणा भरद्रम ततो मम नास्ति गतिर। वसंत पंचमी का शुभ दिवस है। आज के दिन कृष्ण की बासंती रास आज पूरी प्रकृति विशेष करके चिन्मय प्रकृति बासंती रंग में रंगी। भक्तों का हृदय भी भक्ति बासंती रंग में रंगेगा। आज से ही एक फाल्गुन महीने तक बसंत राग में गोपियां कीर्तन करेंगे। जयदेव जी का लिखा हुआ बासंती रास इसी समय में हुआ था गोवर्धन में। तो तुम लोग डिक्टेशन लिखो और हम बोलते हैं, सब लोग डिक्टेशन लिखा है। डिक्टेशन सब एक तरफ से कोई बात नोट कर, उसके बाद में हम एलेबोरेट कर सकते सब डिक्टेशन। कोई ये सब लगा रखे कोई सुनेंगे नहीं, ये सब लगा देना और बस, और काम में लग जाना सेवा काम में, फिर कैसेट सुन लेना बस हो जाए। ये क्या कर रहा है सब लगा। आज से पतझड़ आरंभ एक तरफ में होगा और एक तरफ में नए नए कोमल कोमल पत्ते मंजरी इत्यादि आम के पेड़ों में भी मंजरी लगेगी, कहीं कहीं आरंभ हो चुका होगा। खेतों में बसंती रंग का ये सरसों का फूल खिला हुआ होगा। और असली बसंती एक और चीज है, रंग तो बसंती ही है। सरसों का फूल देखा होगा छोटा सा होता है एकदम, तो बसंती रंग भी होता है कोई पीला भाव। शहर में तो मालूम नहीं है, बाहर में जहाँ कृषक लोग खेती इत्यादि करते हैं वैसा मौसम भी अब से न अधिक खूब ठंडा न गर्म अब आरंभ हो जाएगा। जो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन में संभव आ जाएगा, अभी ठंडी अधिक है गर्मी कम है, गर्मी है ही नहीं। और धीरे धीरे फाल्गुन पूर्णिमा को जब बसंत अपनी सीमा पर पहुंच जाएगा जिहुआ अवस्था में, उसी दिन महाप्रभु का जन्म होगा। तो उस समय में बसंत अपनी पूर्ण यौवन में रहेगा, माने महाप्रभु जी ही यौवन की पूर्णिता है। राधा जी का रंग कुछ मिलता है ना बसंत रंग से, जब श्याम के ऊपर में बसंत रंग खिलता है तब वो सुंदर होता है अपने आप नहीं। सब चीजों में नव जीवन का संचार होता है इस समय। जैसे वर्षा ऋतु आती है तो बीज अंकुरित होकर के लता गुल्मस एकदम सारा मैदान हरा भरा हो जाता है। और इस ऋतु में बसंत ऋतु में जो जो वृक्ष इत्यादि हैं सब में नए अंकुर और नए प्राण संचरित होते हैं, उल्लास होता है। आज के समय ने उस चीज को ढक दिया है, उस प्रसन्नता को, आनंद को। किंतु अप्राकृत जगत में ये सब तो चीजें नहीं है, लूट मार डकैती झूठ मार ये सब तरह तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ये वहां पर नहीं है। इसलिए सबको उल्लास उच्छ्वास है उस जगत में। भक्त भी लोग होंगे आज के दिन से, उनको परम उल्लास हुआ। बासंती रस की ये महिमा है, बासंती रस की वृंदावन के रस में सभी तरह के गोपियां थी और इसमें केवल राधा पक्षी की गोपी है। हमारे समय से गोवर्धन के या राधा कुंड में तो नहीं जाएंगी वो, कहा मानस
मतलब मान क्या हुआ,
वो मान हेतुक अहेतुक सब प्रकाशित होता है। वृंदावन में जिस कारण से हुआ, यदि उसी कारण से वहां हुआ तो दोनों में अंतर क्या रहा है ना? वृंदावन में किस कारण से हुआ? कृष्ण भगवान से अपना आदर सौभाग्य लाभ करके किसी को सौभाग्य मद हुआ और किसी को सबको उस प्रकार से कृष्ण के संग में नित्य इत्यादि करते हुए सबका सुहाग देख करके राधा जी को ये मान हुआ। ये तो हुआ वृंदावन में और सब लोगों ने देखा कि कृष्ण राधा जी को प्रसन्न करने के लिए राधा जी को साथ लेकर के गए। यहाँ तक कोई नहीं देखा, पीछे से पैरों के चिन्ह देख करके उन्होंने अंदाज लगाया, अनुमान किया जो वही दूसरा तो कोई नहीं, क्योंकि हम में से सभी तो हैं, एक नहीं है तो वही एक ही श्रीमती राधिका है। विपक्ष का एक भाव आया अन्याराध, किसी का अन्याराधी तो आया, किसी को आया अपने स्वपक्ष वाली हैं, उनको एक भाव आया, वो बड़ी प्रसन्न हुई। वो लोग कह रहे हैं आपने कहीं देखा जब अपने प्रिया के कंध पर स्कंध पर हाथ रख करके बड़े प्रेम से जा रहे हैं, देखा? ये कौन कह रहा है? स्वपक्ष वाली कह रही, तटस्थ वाली तो साधारण रूप में पूछ रहे, इसको जानते हुए भी ये किसी के साथ में गए हैं और वो इसको आंख बंद करके उसको छोड़ दिया और पूछे। और विपक्ष वाली हैं, दुख प्रकाश कर रही, उनको हृदय में बड़ा ताप हुआ कि इसको लेकर के गए हैं, किसी को लेकर के गए हैं, चंद्रावी हमारी सखी तो यहीं पर है। इसलिए उनको तीव्र ताप हुआ कि हम लोगों को छोड़ करके हमारी सखी को भी छोड़ करके इसको ले गए। तब लोगों ने भीतर ही भीतर में अंदाज लगाया। स्वपक्ष वाली कह रही हैं, स्वपक्ष वाली कौन?
ललिता,
ये कह रही हैं, अथवा श्यामला जी कह रही हैं, रोहित पक्ष वाली। ओ, ये इस देवी ने सबसे अधिक कृष्ण की आराधना की, इसलिए इसको साथ लेकर के गए हैं निर्जन। तो ये तो हुआ वृंदावन के रास में। वहां क्या हुआ होगा? तो इसलिए वहां कुछ विशेष बात हुई होगी, तो भी वहां शतकोटि गोपी हरिते नारी श्री कृष्ण मन, ये बासंती रास का ही उसमें से दिया है अनुवाद भक्ति विनोद ठाकुर जी। पीछे वहां पर वही अपने ग्रुप की शक्ति रास में राधा जी की श्रेष्ठता दिखलाई, जनता भी साथ आ गई, तो कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया और लोगों ने प्रणाम किया, किंतु राधा जी के जाने के साथ ही में उनके हाथ भीतर चले गए, दो हाथ रह गए। अप्रसन्न होकर के मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर के रूप उनसे बात की, राधा जी को कथा में वर्णन किया बताया ये पूछ रहे हैं महाप्रभु जी और उत्तर दे रहे हैं स्वरूप दामोदर
राय रमन,
राय रमन आपकी स्वरूप दामोदर
और अष्टम परिच्छेद अष्टम परिच्छेद आ रही
है, उसमें उत्तर दे रहे हैं। रथ यात्रा में, रथ यात्रा की बात है,
रथ से रोकने माने प्रसंग
हाँ, तो उसी में बता है। जो यदि चुप से चोरी करके ले गए हैं इसमें
वृंदावन दास
शारदीय रास वो डर रहे हैं, इसलिए चुपी से चोरी करके उनको हरण करके ले गए, किसी को समझने नहीं दी। और बासंती रास का है चोरी नहीं, सबके सामने देखते ही उनको प्रसन्न करने के लिए चोरी करें। यदि मान लिया राधा जी को मान हुआ, उनको स्वभाव समझ हुआ, तो राधा जी को लेकर के गए किंतु छिपा करके ले गए। तो छिपा का मतलब है कि और लोगों की भी परवाह है, डर है, सबके सामने नहीं। जैसे रुक्मिणी जी उनको सबसे प्यारी हैं किंतु कृष्ण प्रकट नहीं कर सकते, किसी से भी नहीं करेंगे, बस उन्हीं से कहेंगे, सत्यभामा से कहेंगे तुम हमारी, किंतु विशेष कारण आने पर यदि प्रकट हो जाएगा तो और सब का डर है, इसलिए कृष्ण प्रकट नहीं होने देंगे। किसी प्रकार से यहाँ पर राधा कृष्ण उनको सबसे अधिक प्रिय है, किंतु किसी को ये चाहते हैं कि ये बात का पता ना हो, इसलिए चोरी करके ले गए। इसलिए इसका मतलब है उनको परवाह है दूसरों का, इसलिए राधा जी का उत्कर्ष साबित नहीं होता। इसलिए आप ऐसी बतलाइए जिसे कि राधा जी की सबसे श्रेष्ठता सूचित हो, तब उन्होंने बासंती रास की सबके सामने सबको छोड़ दिया और श्रीमती राधिका जी लेकर के उनको मनाया। इसलिए यहाँ पर प्रतीत होता है कि वो राधा जी के बासंती रास को स्पष्ट करके जयदेव जी ने इस तरह से बासंती रास की ये श्रेष्ठता है। आज ही के दिन में तो विष्णुप्रिया जी का आविर्भाव दिन, भजन राज्य में इनका भी बड़ा अपना महत्व है। नारायण के पास में श्री भू तीन शक्ति, जिसमें भू शक्ति और उन्हीं का प्रकाश एक है उपजा और प्रकाश रामचंद्र जी के समय में जब सीता जी को प्रत्याग किया, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रकाश किया कि जब वो मामगाछी में पहुंचे, वहां पर एक विशाल वट के नीचे, तो रामचंद्र जी कुछ दिन रहने पर वहां पर कुटी बनाई लक्ष्मण जी ने रह रहे थे, पास ही में गंगा नदी बहती है, उस समय और निकट होंगे, और विशाल वट वृक्ष के नीचे वो लोग रह रहे थे। एक दिन रामचंद्र जी को हंसते हुए देखा, मुस्कुराते हुए देखा सीता जी ने, पूछा आप किस लिए मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने का तो कोई कारण नहीं देखता। तो उन्होंने बतलाया, देखो मुझको कुछ स्मरण आ गया, स्मरण मुझे आ गया, यहाँ पर मैं अवतार लूंगा, उस समय मेरा नाम होगा गौरांग, सचिनंदन गौरांग देव, और मैं उस लीला में तुम्हें और अपनी मैया को, पिता मैया और पत्नी को दोनों को रुलाकर बीरा सागर में निमज्जित करा करके मैं संन्यास लेकर के घर छोड़ करके चला जाऊंगा। ऐसा क्यों? तो उन्होंने बतलाया, देखो अभी इस लीला में बहुत सी बातें होंगी, मैं नहीं चाहता था कि प्रकाश करो, किंतु तुम बार बार कह रही हो इसलिए प्रकाश, अभी तो तुम्हारा जीवन बहुत सुख में चल रहा है, अभी ऐसे हम लोग भ्रमण करते करते भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों में हम लोग दक्षिण में जाएंगे, वहाँ गोदावरी के तट पर दंडकारण्य में हम लोग कुछ दिन रहेंगे, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों से भेंट होंगे, विपत्तियाँ भी आएंगी, और अंत में तुमको अपहरण करके ले जाएंगे कोई अपहरणकारी, और तुम्हारे विरह में मैं छटपट करूंगा, इसके बाद में उसके वंश को ध्वंस करके मैं तुम्हें लौटा करके ले आऊंगा, फिर राज्य तिलक होगा, और उसके बाद में 11,000 वर्ष तक अभी पृथ्वी में रहेंगे, और अंतिम समय में लोक शिक्षा के लिए हम तुमको तुम्हारा प्रत्याग करेंगे आजीवन के लिए। क्यों ऐसा करेंगे? इसलिए करेंगे जो प्रेम का दो पहलू होता है, एक मिलन और एक विरह, एक संभोग और एक विप्रलंब, दो प्रकार की ये पहलू होते हैं, जिसमें प्रारंभ होता है विप्रलंब से, पहले होता है प्रीति होने के बाद में जो मिलन में बाधाएं आती हैं, तो उसी को पूर्वराग कहते हैं, पूर्वराग में मिल नहीं सकते, बाधाएं होती हैं, विवाह होने के बाद ही में मिल सकते हैं या संभोग की लीला हो, तो और इसके बाद में मिलन होने के बाद में बीच बीच में विरह होता है, विरह जितना ही लंबा होगा तीव्र होगा उसके बाद में मिलन का जो आनंद होगा उतना ही गहरा और अधिक होगा, घना होगा। ये चार प्रकार के विप्रलंब माने गए और चार प्रकार के उसी प्रकार से मिलन भी माना गया, पूर्वराग मान प्रवास प्रेम उसमें प्रवास निकट का और दूर, जैसे गोचारण इत्यादि जो है ये निकट का, और द्वारका मथुरा जाना सुदूर प्रवास। किंतु सुदूर प्रवास होने पर भी नित्य के लिए प्रवास नहीं होगा, जैसे श्रीमद्भागवत में दिखलाया गया, मथुरा जाने के बाद में फिर उनका मिलन नहीं होता, फिर वो द्वारका के रंग में रंग जाते हैं और सदा के लिए इनको छोड़ देते हैं। किंतु श्रीमद्भागवत के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है, ये भागवत में परोक्षवाद है, अर्थात उस मिलन को आनंददायी बनाने के लिए स्पष्ट रूप से फिर मिलन हुआ इसका वर्णन नहीं करते। किंतु श्रीमद्भागवत कभी भी दुखांत नहीं हो सकता, कभी भी दुखांत नहीं हो सकता, कभी भी गोपियों से नहीं मिलेंगे, गोपों से नहीं मिलेंगे, नंद बाबा से नहीं मिलेंगे, और सब समय विरह रहेगा, विरह में रहते हुए मर जाएंगे, तो ये प्रेम नहीं हुआ। इसलिए प्रेम कैसा होना चाहिए? मिलनांत होना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, नहीं तो रूप गोस्वामी इत्यादि प्राण ही छोड़ देते, हम लोग उनका भजन नहीं करते। यदि सब समय विप्रलंबी रहेगा, और विप्रलंब ही यदि श्रेष्ठ है तो कभी उनसे मिले ही नहीं, व्यवस्थित विप्रलंब होता रह जाएगा, ये ठीक है। यदि वो मिलन में पुष्टिकारक है विरह, कोई दुख हम लोग सहते हैं इसलिए कि अंत में सुख, हम लोग इतना परिश्रम करते हैं पर सुख नहीं मिलेगा, केवल परिश्रम ही करते रह जाएंगे, दुखी होता रह जाएगा, तो कोई दुख उठाएगा? कोई अपना घर बार बेच करके इंजीनियरिंग अथवा कानून इत्यादि पढ़ाते हैं, डॉक्टरी पढ़ाते हैं और सब करते हैं, अपना सब कुछ बेचते हैं, जानते हैं वो दो चार महीने में ही हम यदि उसकी नौकरी हो गई, पास कर लिया, इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, या कोई ICS हो गया, तो दो एक महीने में वो कर चुक जाएगा अपने आप। अब विशेष करके आज कर के दिनों में तो कोई बात नहीं, हजारों करोड़ रुपए बना लेंगे। तो उसी तरह से प्रेम में भी मिलन के लिए विरह शासक, किंतु कभी नहीं मिलेंगे, ऐसी वस्तु की आराधना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आनंदमय है ना, वो परम आनंदमय, आनंदमयो अभ्यास, आनंदमय ब्रह्म, इसलिए वो आनंदमय। इसलिए पूर्व वराग में जो दुख सह जाता है इसलिए कि उनका मिलन, मान में कुछ देर तक इधर उधर बैठे, ये इधर बैठे हैं, बातचीत नहीं रो रही है, किंतु बड़ा भारी इसमें वे विरह होता है, सामने बैठ करके चाहते हुए भी दोनों और बातचीत नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, आदान प्रदान नहीं कर सकते। थोड़ी देर के बाद में फिर यदि अहेतुक मान होता है तो अहेतुक रूप में ही दूर हो जाए, जैसे अहेतुक किसी को मान हुआ श्रीमती जी को रघुली अहेतुक मान हो गया तो अहेतुक रूप में उतरेगा, कैसे अहेतुक रूप में उनको मान हो गया और भौरा आकर के मराने लगा और राधा जी के मुखारविंद में की तरफ में आ रहा है, क्योंकि भी एक कमल है ना, और पहले ऐसे ऐसे कर रही हैं, अब जब देखा जैसे हम नहीं मान रहा है तो झट उनकी गोदी में गिर गई, ऐसे पकड़ लिया, मुख कृष्ण की तरफ में मोड़, देखो अपने आप को मान हो रहा है, वो लौट करके जा रही है, किसी सर्प ने उनको तरफ में ऐसे किया, अगर दूर हो गए। इसी तरह प्रवास गोचारण के समय में वन में जाने पर गोपियां कितना दुख प्रकाश कर रही, नदियों का उदाहरण देख करके, हिरणों का, मेघ का, गायों का, बछड़ों का, आकाश को, बादल को, पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदार्थ जरा गए, सबसे अधिक चरम रूप पुलिंदिया का उदाहरण दे, अरे हमारा जीवन व्यर्थ है, यदि मर करके हो तो हिरण जन्म ले, जैसे कृष्ण का दर्शन। यदि मरे तो मेरे करके सुख पक्षी कोयल मयूर इत्यादि होकर के आए, उसमें कोई बाधा देने वाला नहीं रहेगा, नहीं कुछ हो। गाय होकर के बंसी बजा रहे हैं, सुंदर रूप है, बस कान खड़ा होकर के और आंखों से उनका रूप सुधा को पान कर रहे हैं। नदी बन करके आए, धारा रूपी बाहु में कमल के पुष्पों को लेकर के उनके चरणों में और उनको बस्तक्षल तक पानी में लेकर के उनका आलिंगन करें। आकाश में बादल होकर के जन्मे, जब कृष्ण कहां जहां जाए बादल होकर के उनके ऊपर में छत पे छाया करें और ऊपर से प्रेम की आंसू की बूंदे उन पर टपकाए। पूर्णा पुलिंद उर्गाय। अब गोवर्धन में पुलिंदी होकर के जन्म ग्रहण करें और जन्म ग्रहण करके कृष्ण के चरणों में कुमकुम लगा हुआ है, उसको धूप की घास पर लग गया, उसके बिंदु से मिलकर के उसको अपने शरीर में लगा करके आनंद से भर जाते हैं। ये हमारा सौभाग्य, किंतु कुमकुम उन्हीं का है जिसके लिए लालसा करते, अपना महत्व भूल जाते हैं। ये सब है जब वो कृष्ण गोचारण करने जाते हैं, अथवा वो 34 अध्याय है जुगल गई, वो विरह का है। ये सब चीजें कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, मिलन में ही अंतर ध्यान हो गए और जयतिथि अधिकम, ये सब का ये निकट प्रवास का है और सुदूर प्रवास का उद्धव जी से मिलने के बाद में जब उद्धव जी से प्रसंग हुआ उस समय में गोपियां विरह में आर्त में रह करके रोने लगी। उद्धव जी ने कहा जी आज हमारा जन्म सार्थक हो गया, हे देवियों तुम लोगों के विरह से हमको ऐसी शिक्षा जो आज तक हमको शिक्षा, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, ऐसा प्रेम न भूतो न भविष्यति, ऐसा प्रेम हमने कभी नहीं किया और अपने को कृतार्थ मान लिया। कब? जबकि गोप श्रीमती राधिका जी कह रहे हे नाथ हे रमण प्रेष्ठ, नहीं हा नाथ भजनार्थ नाथिनाशन समुद्धर माने इस विपर्लंभ के सागर में मैं डूब रही हूं, हमको इसके पार उतारो। हे नाथ ब्रजनाथ ब्रज ब्रजनाथार्थी हर निमग्न, तुम लोग क्यों याद करेगा, हमको तो स्मरण शक्ति याद करना चाहिए। सारा ब्रज विरह रूपी आरती रूपी विरह में डूब रहा है, उसमें हम डूब रही हैं। हे ब्रजनाथी हर आप हमें इस दुख से उबारे। इसको देख करके यह प्रवास का है सुदूर का और रो रही है उद्धव जी का, ओहो ऐसा हमने नहीं देखा कहीं विरह, ऐसा कहीं प्रेम विरह क्यों होगा, जिनको उनके प्रति जितना ही अधिक प्रेम होगा उतना ही अधिक किसी के लिए विरह का कारण होगा। पांच लड़के हैं एक मैया के, सबके लिए बराबर नहीं रोएगी, सबके प्रति उसका बराबर ही होना चाहिए, नहीं होगा। किसी एक के प्रति या तो सबसे छोटा हो या कोई और उसमें हो, मैया की जो सेवा कर रहा हो अब मैया उसको मानती है अधिक, उसके विरह में अधिक तड़पती है। तो उसी तरह से जिसका सबसे अधिक प्रेम होगा वही उसको विरह अधिक होगा। इसलिए राधा जी को सबसे मिलन में उनके विचित्र भाव होते हैं, प्रेम वैचित्र इत्यादि भाव होते हैं। कृष्ण बैठे हैं साथ में और उनको अनदेखा करके देख नहीं रही और कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, वो उसी का है। वो हे नाथ हे रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाबुझ कृपणाया दासास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय। ये वहाँ का है, निकट ही है, कृष्ण कहीं झाड़ी में छिप रहे हैं और इसके लिए ही यहाँ, और यहाँ तो मथुरा गए हैं उद्धव को बतला। ये सुदूर प्रयास प्रवास। अब प्रेम वैचित्र का प्रेम सरोवर इत्यादि में उसका है। ये राधा जी के अतिरिक्त सब में अधिक नहीं देखा जाए, केवल राधा जी में और उनकी सखियों में महाभाव रूढ़ तक देखा जाएगा। अधिरूढ़ में ये सब प्रेम वैचित्र, प्रेम वैचित्र रुक्मणी सत्यभामा में भी कुछ होगा, ललिता इत्यादि में भी होगा, किंतु विशेष रूप में होगा श्रीमती राधिका जी के गणों में और राधिका में, और मादन वाला जो है वो किसी में नहीं, बस इन्हीं में होगा। तो ये सब को रूप गोस्वामी ने इसमें सब दिखलाया है, प्रेम का स्वरूप क्या है, कैसे इसको कहते हैं। तो ये बासंती रास में है, हाँ, तो मामगाछी की, मामगाछी की वही कृष्ण रामचंद्र जी समझा, ये प्रेम के दो पहलू। पहले में मैंने देख लाया, हमने में दोनों में मिलन हुआ जनकपुरी में। पहला मिलन हुआ कहाँ, बगीचे में, उपवन में, यहाँ पर सीता जी पुष्प चयन के लिए गई और रामचंद्र जी अपने गुरु जी की पूजा करने के लिए पुष्प चयन के लिए गए, वहां पर उनके भेंट। रामचंद्र जी अत्यंत मुग्ध हो गए, उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, जी से आज हमको डूब मरना चाहिए, आज तक हमने किसी स्त्री का मुख नहीं दर्शन किया, देख करके उससे मुग्ध नहीं हुए, आज न जाने क्यों हो गया, इस किशोरी को देख करके आज हमारा मन कुछ विचलित हो गया क्यों। हमारे अयोध्या के राज्य में ऐसा तो आज तक नहीं देखा गया, तो कहते हैं हमको मालूम होता है जी आपकी शादी वहीं पर होगी, उन्होंने अनुमान से बताया, क्योंकि वो भाई थे ना, इसलिए इतना तो कह ही सकते थे, एक साथ में रहने वाले। उधर सीता जी की भी ऐसी दशा, वो उनसे प्रकाश कर रही, आज तक हमारे जीवन में ऐसा कभी नहीं, ठगी सी रह गई। और वही जब रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा एक मिनट के अंदर में, और तोड़ते ही साथ में पुष्प वृष्टि होने लग गई और स्त्रियों ने सजा करके उनको रखा था, और वही कह रही थी ये जनक की प्रतिज्ञा भंग हो जाए, किंतु इसी लड़के के साथ में शादी हुई, बस स्वयंवर में वो धनुष टूटा और हाथ में वो माला लेकर के विजय माला और आगे बढ़ी। उनकी सखियां ने उनको पकड़ रखा है और इतना आनंद आया कि चलना फिरना हाथ उठाना इत्यादि सब भूल गए। वहां तक पहुंचते पहुंचते आंख बंद अपने आप, आंख से आंसुओं की धारा आने लग गई और हाथ को उठे नहीं उठाने, तब सखियों ने उनको सचेत कराकर उनके हाथों को अपने हाथों के अवलंबन से उठा करके, उसमें कितना उनको आनंद हुआ होगा दोनों को, सीता जी का, और यद्यपि वो नित्य प्रिय प्रिया है, किंतु आज ये लौकिक लीला में, प्रकट लीला में इस प्रकार से दिखा। जब उनको हुआ होगा तो गोपियों के साथ में, राधा जी के साथ में इनका जब मिलन होगा तब कैसा हुआ, के वा सुनाई लो कृष्ण नाम कानेर भीतरे मरमे पसीलो आकुल करुण। जिनके देखने से ही ऐसा होता है, उस गोकुल की महिलाएं क्या करती होंगी, इत्यादि का सबका वर्णन कर और भी अधिक। तो इस तरह से रामचंद्र देख रहे हैं, और अब ये पार्ट प्ले हुआ और अब तक हम लोग 13 वर्ष तक एक साथ में सुख में दुख में रह रहे थे, किंतु अब कुछ दूसरी लीला होगी, दूसरा पहलू चलेगा, अब भी प्रलंब होगा, अब तुमको मैं अलग रख दूंगा और छाया सीता को लेकर के और सब लीलाएं करूंगा, किंतु मालूम होगा कैसा, एकदम ठीक जैसे राधा जी के विवाह अभिमन्यु से नहीं हुआ, गोपियों की शादी
दूसरे गोप से,
वो सब जोग माया ने एक स्वप्नवत कराया, असल कुछ और ही बात थी, कुछ और बात थी। प्रत्येक गोप ये समझता है कि हमारी पत्नियां हमारे साथ में है और गोपियां क्या कर रही हैं, ब्रह्मरात्रि के समान कितने हजार हजार वर्षों तक कृष्ण के साथ में वृंदावन में रास मिले, और सबको मालूम है जी हमारी पत्नियां हमारे साथी में हैं, खिला रही हैं, सो रही हैं और काम कर रही हैं सब, इसलिए उनको किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं हुई, क्यों,
अरे जो सबके अंतर के आत्मा हैं, वो उनके पतियों के भी हैं, अंतस चढ़े और उन पत्नियों के भी हैं, इसलिए किसी ने उनके प्रति कोई दोषारोप नहीं किया। इसलिए रामचंद्र जी की भी लीलाएं भी ऐसे ही निगूढ़ हैं। बस उन्होंने वहां से लौट करके आए, वहां से रावण हर करके ले गया, कितना उनको कष्ट हुआ होगा सीता जी को। उन्होंने एक वर्ष तक कुछ नहीं खाया, कोई कपड़ा बदला नहीं, स्नान नहीं किया, इसके लिए पृष्ठभूमि बना दी अनुसुईया वाली, उन्होंने उनको सब दे दिया। जिन्होंने खाया नहीं, पानी नहीं पिया, भूख प्यास सब, रावण के घर में एक बूंद पानी नहीं दिया, कपड़े नहीं बदले, क्योंकि वो सब अनुसुईया का दिया हुआ था। अनुसुईया जी तब इनसे बड़ी हो गई नहीं, उनको अनुग्रह करके उनकी सेवा ग्रहण उन्होंने की। उस समय में हनुमान जी को, जबकि वो अंगूठी लेकर के गए वहां पेड़ पर चढ़े अशोक वृक्ष के ऊपर में, तो उन्होंने चंद्र से आग मांग रही हैं, उनको चंद्र की सुशीतल किरणें ऐसे आग जैसे तपा रही हैं, यही विरह का ये है। विरह में उल्टा हो जाता है, सुख दुख मालूम होता है, दुख सुख मालूम होता है, आग ठंडी मालूम होती है, बर्फ गर्म मालूम होती है, इस तरह से विरह में। इसीलिए तो साधन इत्यादि करने की जरूरत है। फिर वहां से किसी प्रकार आए भी, कुछ वर्षों तक, हजारों वर्ष तक, कितना 10,000 वर्ष तक राज्य किया होगा, और इसके बाद में आने पर जानते